ओम शांति, ओम शांति। सुस्वागत है आज के इस सत्र में। आप सभी का बहुत 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 दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज का जो विषय है हमारा कालचक्र, एक दिन पूर्व भी आपने आदरणीय भ्राता जी को सुना। आदरणीय भ्राता जी के परिचय से तो आप सब परिचित हैं ही। जैसा कि आपका नाम है आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी, आपके ही नाम के अनुरूप हैं। आपकी लेखनी को, आपकी वाणी को, दोनों को ही ईश्वरीय वरदान प्राप्त है, क्योंकि आपकी वाणी से जो भी लाभान्वित होता है उसको ये लगता है कि उसके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान हो गया है। और आपकी लेखनी के द्वारा जो भी पुस्तकें लिखी जाती हैं, जो भी साहित्य लिखा जाता है, वो भी अनेकों के जीवन को रोशन कर देता है। कहा जाता है दिमाग जिनका आइस, जीवन उनका बने नाइस, दिल जिनका प्योर, सफलता मिलती उनको श्योर, नजर जिनकी क्लियर, वही बनते सबके डियर, नजर जिनकी क्लियर, वही बनते सबके डियर, फॉर एग्जाम्पल अवर रिस्पेक्टेड ब्रदर। इन सब खूबियों की खान से सुशोभित हैं हमारे इस आभा मंडल भूमंडल के सूर्य भाई जी। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आज का जो हमारा विषय है उस पर हम सभी को लाभान्वित करें। और इसके पश्चात आदरणीय भ्राता जी, आप सबके मन में अगर राजयोग से संबंधित, अपने मन की कुछ समस्याओं से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें दे दीजिएगा, बाद में भाई साहब उनका भी समाधान करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। भरपूर हुए आप, भरपूर हुए, कुछ अच्छी चीजें मिली, बहुत अच्छी मिली। क्योंकि मनुष्य के विचार अगर बदल जाते हैं तो उसका संसार भी बदल जाता है। विचारों को बदलना परम आवश्यक है। मैं टॉपिक शुरू करने से पहले दो तीन चीजें आपके ख्याल में देना चाहता हूं जिसका जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। एक बात है, जीवन में जब किसी के भी बातें आती हैं या समस्याएं आती हैं तो मनुष्य सोचता बहुत है। तो एक बहुत सुंदर फॉर्मूला है, बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। ठीक है, बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। जितना ज्यादा सोचते हैं मन उतना ही वीक होता है, और मन वीक होने से वो छोटी बातें बहुत भयानक प्रतीत होने लगती हैं। इस पे ध्यान देंगे सभी। बहुत सोचना, कभी कभी आज सबको अनुभव होगा कि कोई जीवन में बात आई, कोई समस्या आई, हम बहुत परेशान रहे, नींद भी नहीं आई, सोचते ही रहे, और जब उस बात की रियलिटी का पता चला तो पता चला कि वो तो थी ही नहीं। सबके पास अनुभव होते हैं कि वो तो बहुत छोटी सी थी। दूसरी बात, कई लोगों में आदत है बातों को पकड़ कर रखने की। इससे हमारे ब्रेन को, माइंड को, जीवन को बहुत नुकसान होता है। जो बातें हमने पकड़ ली अर्थात बुद्धि में रख ली, उससे एनर्जी वाइब्रेट होती रहती है। ये सभी को एक सीक्रेट मालूम रहे, जो भी संकल्प इधर रुक गया उसे लगातार एनर्जी क्रिएट हो रही है, वो ब्रेन को जाती रहती है, वो डिप्रेशन लाती है, खुशी को नष्ट करती है और नई समस्याओं को, बीमारियों को क्रिएट करती है। इसलिए जीवन का एक छोटा सा सिद्धांत बना लें कि बातों को पकड़कर नहीं रखना है, छोड़ते चलो, छोड़ो तो छूट जाए। ये जीवन का बहुत ही सुंदर सिद्धांत है। और तीसरी बात, एक बहुत अच्छा नियम आप अपने जीवन में लेकर चलें, लक्ष्य हमेशा बहुत श्रेष्ठ हो, महान हो, टारगेट हाईएस्ट हो, लेकिन जो कुछ प्राप्त हो जाए उसे स्वीकार करके आगे बढ़ें। ये बहुतों के साथ गड़बड़ हो रही है कि टारगेट बहुत ऊंचा रखा था, मिला नहीं तो निराश, काम ही छोड़ दिया। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स के केसेज आते हैं, मैंने लक्ष्य रखा था 12वीं में 95% लाऊंगा, लेकिन मेरे 92 आए हैं, निराश। मैं उनको कहा करता हूं, जो बच्चे पास हुए हैं, जिनके 50% आए हैं, उनके घर में खुशियां मनाई जा रही हैं और तुम्हारे 92 आ गए हैं, तुम उदास बैठे हो? ये बहुत प्रैक्टिकल होता रहता है। तो लक्ष्य बहुत सुंदर बनाएं, लेकिन प्राप्ति हमारे हाथ में नहीं होती सदा। कोई भी अचीवमेंट, उसके पीछे कई फोर्सेज काम करते हैं। एक स्टूडेंट बहुत होशियार भी हो लेकिन नंबर कम आ जाते हैं, कई कारणों से कम होशियार बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं। इसलिए ये एक लक्ष्य जीवन के हर फील्ड के लिए बहुत ही सुंदर है। इसके साथ जुड़ा है वर्तमान से संतुष्टता, बहुत जरूरी है। लोग अपने वर्तमान में संतुष्ट नहीं हैं। मेरे पास आप में से भी दो चार लोग आए, हमें हाई कोर्ट का जज बनना है लेकिन बन नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं रोकती हैं मनुष्य को, तो एक असंतोष रहता है जीवन में। ध्यान दें आप इसे, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं वो सोचते हैं मुझे चीफ जस्टिस बन जाना चाहिए, उस संकल्प को लेकर वो जीते हैं, और मान लो नंबर नहीं आया तो एक असंतोष के साथ रिटायर होते हैं। इसको आप थोड़ा सा ठीक करेंगे, आप सभी बुद्धिमान हैं और आपको तो संसार को एक मैसेज देना होता है। जूरिस डिपार्टमेंट है, ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबकी टेंशन दूर होती है, जिसमें सभी को रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। मुझे याद आ गई एक घटना, दिल्ली के एक मल्होत्रा जी हैं, मेरे पास आए, हम योग के कुछ प्रयोग सिखाते हैं, तो सभा में ही अपना एक अनुभव सुनाया कि हमारा एक केस 37 साल से चल रहा था, 37 years। सब आप जानते हैं इतने साल कोई केस चले, मनुष्य की क्या मेंटेलिटी रहती है, कुछ हो ही नहीं रहा था, हम भी ऐसे ही बैठे थे। 21 दिन उन्होंने वो योग का सुंदर प्रयोग किया, 25वें दिन उन्हें डेट मिली और फैसला उनके फेवर में हुआ। ये उनके लिए एक बहुत ही सुंदर चीज थी, एक सुंदर एक्सपीरियंस था कि मन की शक्तियां कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देती हैं। अब मैं आ जाता हूं आज के सब्जेक्ट पर जो बहुत सुंदर है, काल चक्र। हमारे भारत में इतिहास भी अधिकतम 2500 साल का है। आप सब जानते हैं उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। हमारे ऋषि मुनि लोग ताड़ पत्र पर और कुछ पत्ते होते थे जो बहुत मजबूत, उन पर लिखते थे। खुदाई की जाती थी, अच्छे अच्छे पत्थरों पर खुदाई करके जो भी राजा के बारे में कुछ है वो लिख दिया जाता था। उससे पहले के इतिहास के बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं है। अमेरिका का इतिहास आप देखो बहुत थोड़े से सालों का, 450 साल का। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, मैंने उनसे पूछा तुम्हारा इतिहास कितना है, कहा 250 साल से लोग यहाँ आए हैं, 150 साल का हमारा इतिहास है। ब्रिटेन रशिया का थोड़ा ज्यादा है। तो ये जो समय के बारे में जानकारी है, इसके बारे में मनुष्य के पास बहुत थोड़ा ज्ञान है, अल्पज्ञता है। वैज्ञानिकों ने कुछ रिसर्च कर ली, उसके आधार पे लोग इसको अरबों साल तक ले जाते हैं। आज मैं आपके समक्ष ये सृष्टि का जो चक्र है, जो सतयुग से लेकर कलयुग तक चलता है, इसके बारे में कुछ वो रहस्य रखने जा रहा हूँ जो स्वयं भगवान ने सुनाए हैं। आपको ये बात शायद कल्पना भी लग सकती है, आप ये भी सोच सकते हैं हम ये क्या बोल रहे हैं, हमारी ये भावना भी हो सकती है, परंतु एब्सोल्युटली ट्रू। आप इसको जान सकते हैं कि स्वयं भगवान इस समय कैसे सत्य ज्ञान देते हैं। तो हम शुरू करते हैं, सतयुग से ये चक्र प्रारंभ होता है। देखिए ये चक्र है, जैसे रात दिन का चक्र है, जैसे ऋतुओं का चक्र है, जैसे एक साल का चक्र है। चक्र की समाप्ति का अर्थ समय की समाप्ति नहीं होता, एक समय पूरा हो जाता है। ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, ये अनादि है, अविनाशी है। ध्यान दें इस बात पर आप, ये ऐसा भी नहीं था कि कभी नहीं थी, और ऐसा भी नहीं होगा कि ये कभी न रहेगी, यहाँ जीरो हो जाएगा। इसमें ये चार युगों का चक्र चलता रहता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सबने सुने होंगे ना चारों युग। अब देखिए सतयुग के बारे में मैं ऐसा कहूंगा लगभग 0% नॉलेज है हमारे यहाँ, जबकि ये सतयुग भारत में था। मेरे पास यहाँ चित्र नहीं है, आप चित्र देख सकते हैं, हमारी आर्ट गैलरी भी है, कईयों ने देखी होगी। जब यहाँ सतयुग था, जब ये चक्र प्रारंभ हुआ था, जैसे आप देखते हैं ये दिन का चक्र है, जब ये सवेरे प्रारंभ होता है तो कैसी सुखद फीलिंग होती है, मनुष्य होकर उठता है, फ्रेश उठता है। जो लोग जल्दी उठते हैं, आप लोग यहाँ आए हैं जल्दी उठ रहे हैं, प्रकृति का सौंदर्य देखते हैं, चारों ओर पहाड़ियां हैं, ठंडी हवाएं हैं। ऐसे ही जब ये सृष्टि शुरू होती है, ध्यान से सुनेंगे, आत्माएं परफेक्ट आती हैं इस संसार में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मनुष्य आत्माएं परफेक्ट आती हैं इस संसार में, तो हम सभी मनुष्य परफेक्ट होते हैं, अर्थात देवी देवता होते हैं। यही बात कहीं न लिखी है न किसी को पता है, आज आपको इसकी जानकारी हो। जब हम सतयुग में थे, आए थे अपने धाम से, आत्मा परम धाम से आई, देह लिया, हम सब देवता थे। ये संसार देवयुग था, हमारी वो सभ्यता सबसे महान थी। हम भारतवासी आज अपनी उस महान सभ्यता को पूरे भूल गए हैं। उसके केवल चित्र हैं, मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा होती है। आप देवी देवताओं के चेहरों को देखो, आज का कितना भी सुंदर मनुष्य उसका चेहरा और किसी देवी देवता का चेहरा, दोनों में अंतर दिखाई देता है या नहीं? देवताओं के चेहरों पे डिविनिटी, प्योरिटी, आज के मनुष्य के चेहरों पे नूर नहीं है। सुंदरता हो, गुण भी हो सकते हैं, पर जो तेज है आत्मा का वो दिखाई नहीं देता। हर एक के चेहरों पे कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई पीसलेसनेस, कहीं ना कहीं कोई बैड इम्प्रेशन ब्रेन पर छाया हुआ ये दिखाई देता है। ये भारत उस समय विश्व गुरु था, लाइट हाउस था, स्वर्ग कहते हैं उसको। आप सभी ने यहां सुन लिया होगा, स्वर्ग ऊपर और नरक नीचे ऐसा कुछ नहीं है। इस संसार में जब मनुष्य देवत्व को प्राप्त है तो वो स्वर्ग है, और जब उसका वो देवत्व समाप्त हो जाता है, जब पाप कर्म बहुत बढ़ जाते हैं, उसको ही नरक कहते हैं। वो समय, उसके लिए हमारी पुस्तकों में, ग्रंथों में केवल इतना लिखा है कि सतयुग में धर्म के चार चरण थे। चारों माना चारों पायों पर धर्म स्थित था, अर्थात परफेक्ट फॉर्म में था, संपूर्ण पवित्र था, सतो प्रधान था, उस धर्म में बहुत शक्ति थी। आज उसी कल्चर को यदि हम भारतवासी पुनः जान लें और थोड़ा थोड़ा अपनाने लगें, तो हमारा देश पुनः विश्व गुरु बन जाएगा, और ये बनना है। चक्र चला, हमने एक जन्म लिया, दूसरा, तीसरा, समय बीतता गया और 1250 वर्ष बीते, त्रेता युग प्रारंभ हुआ। वहां पर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होता है, जो परफेक्ट देवता हैं। वहां के राजा और रानी माता पिता समान होते हैं, किसी को भी उनसे मिलना इजी होता है, जैसे घर में माँ बाप से मिलता है। ये विश्व एक परिवार होता है। हम ऐसी महान कल्चर में पले हैं, हम सभी के अंदर वो देवत्व है। ये बताने का हमारा लक्ष्य ये होता है कि हम अपने अंदर छुपे हुए उस देवत्व को अच्छी तरह पहचान लें। त्रेता युग आया, पहले ही सम्राट राम सीता, श्री राम और श्री सीता, वो भी देव युग था। थोड़ा हम नीचे उतर आए, तीन कलाएं गाई, तीन चरण गाए गए हैं धर्म के, यानी धर्म की शक्ति कुछ कम हो गई। उसके भी 1250 साल बीत गए, बहुत सुंदर समय था वो। रामराज फेमस है हमारे भारत में, केवल इतिहास में इतना ही है, लोग रामराज की कल्पना करते हैं। लेकिन ये दोनों युग जो 2500 साल तक चले, बहुत ही सुंदर काल था इस धरा पर, जहां आपको पता नहीं खुशी होगी या नहीं, कोर्ट नहीं थे, जज और वकील भी नहीं थे। कारण तो आप समझ ही गए होंगे, कोई अपराध ही नहीं था, राजा को भी न्याय नहीं करना होता था, कुछ था ही नहीं। परफेक्ट वर्ल्ड, डिविनिटी से भरा हुआ संसार, देवत्व को अपने में समाये हुए मनुष्य, न पुलिस, न हॉस्पिटल, ये सब जो आज का तामझाम है दुनिया में, ये सब वहां नहीं होता है। संसार सुख शांति और संपदा से भरपूर होता है। भारत में आपके लिए ये कल्पना भी हो सकती है, सोने के ही महल होते थे, हीरे जड़ित, आपने कहीं देखा हो। जो लोग यहाँ साउथ से आए हैं, चित्तूर एक जगह है, वहां पर एक सन्यासी ने सोने का बहुत सुंदर मंदिर बनाया है। छोटा सा नहीं है, 40x100 का है। लक्ष्मी का मंदिर है, हम वहाँ 2 बार गए हैं। और आश्चर्य की बात यह कि ये सन्यासी उस समय केवल 30 वर्ष का, देवी का भक्त, बहुत अच्छी इसकी मनोस्थिति। इसको कुछ ऐसी प्रेरणाएं प्राप्त होती थी इसकी साधनाओं में कि वो सोने का मंदिर बनाए। उसने वो सोने का मंदिर बनाया और आप आश्चर्य करेंगे कि किसी को पता नहीं चला। ये कैसे हो सकता है, हम भी सोचते थे कि इतना बड़ा मंदिर बनाया, इतना सोना आया, उस पर कढ़ाई हुई। मैंने गुरुद्वारा भी देखा है, उधर ही है नाम मुझे नांदेड़, उसमें भी सोने का काम बहुत सारा हुआ। हमने तब भी वो देखा था जब वो फिट कर रहे थे, हमें दिखाया तो, और उसकी ओपनिंग की डॉक्टर अब्दुल कलाम ने। तो इतना सुंदर मंदिर देखने में आता है, इतने अच्छे वाइब्रेशंस है वहां। ये सतयुग सोने का मंदिर ही था सारा, अथाह धन संपदा थी वहां। द्वापर युग जैसे ही आया, देवताओं का देवत्व समाप्त हुआ, उनकी प्रारब्ध पूर्ण हुई, और तब से हमारे पास इतिहास हमें प्राप्त है। महात्मा बुद्ध आए, सम्राट हुए भारत में, पाटलिपुत्र राजधानी होती थी, उज्जैन राजधानी होती थी। और ये द्वापर युग का काल भी बहुत सुंदर बीता। धर्म के 2 चरण रह गए, यानी उसकी शक्ति और कम हो गई। 1250 साल बीते। आप में से जिसने इतिहास पढ़ा है, गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण काल मानते हैं। मौर्य काल, गुप्त काल, और भी कई सम्राट हुए, जहां घरों को ताले भी नहीं लगते थे, जहां चोरी चकारी नहीं होती थी, कोई भूखा सोता ही नहीं था, कोई रोता नहीं था, दुख नहीं था। ऐसा सुंदर काल हमने द्वापर युग का भी देखा, वहां हम सब थे। आप सभी को ये मालूम हो, ये हम सब की कहानी है। हम जन्म लेते लेते आ रहे हैं, कलयुग में प्रवेश कर लिया। ये 3 युग बीते, कलयुग में प्रवेश किया तो दिखाया है धर्म का 1 चरण रह गया केवल, यानी धर्म की बहुत सारी प्योरिटी समाप्त हो गई। धर्म, मैं शब्द बोलना चाहता हूं, निर्बल हो गया। रिलीजन इज माइट, रिलीजन में बहुत माइट है, लेकिन वो माइट प्योरिटी की माइट होती है। वो माइट धर्म उसे कहते हैं जिसमें धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातें मनुष्य के जीवन में हो, तब धर्म शक्तिशाली होता है। धर्म का अर्थ है श्रेष्ठ धारणाओं से भरा हुआ जीवन। लेकिन आज क्या हो गया, धर्मों का केवल, ग्रंथों का केवल पाठ होता है। कोई भागवत की कथा कर रहे हैं, रामायण की कथा कर रहे हैं, गीता पढ़ सुना रहे हैं, लेकिन उसको जीवन में लाना ये भूल गए। इसलिए धर्म के लिए दिखाया 1 चरण। कलयुग के ये 1250 साल भी बीते, लगभग बीते, हमारे भारत ने इतिहास का उलटफेर देखा। कई राजवंशियां स्थापित हुए, अधीनता आई, कष्ट हुआ भारत वालों को। और आप सब जानते हैं जब ब्रिटिशर्स का राज हुआ तो क्या क्या हुआ, मुझे बताने की जरूरत नहीं। भारत गरीब हो गया, उनकी नीति ऐसी थी, भारत गरीब हो गया। यहाँ एजुकेशन समाप्त हो गई, यहाँ की कल्चर को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन ये भारत एक महान देश है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं भी बहुत देशों में गया हूँ, सुंदर है देश। ब्रिटेन में गया पीछे, सफाई है, सुंदरता है। मैं ओमान में गया, वहां के मकान देख के तो बड़ा ही अच्छा लगता था, सफेद रंग के एक जैसे पत्थर के, खराब भी नहीं हुए। हमारे यहाँ जैसे बारिश पड़ के मकान बाहर से खराब हो जाते हैं, बिल्कुल स्वच्छ ऐसा लगता था। बहुत सुंदर मार्बल भी बाहर लगा दिया गया है। मैं थाईलैंड में भी गया, बहुत सुंदर। सिंगापुर भी बहुत सुंदर, सफाई बहुत ज्यादा। मैं एक छोटी सी बात सुना दूं हंसी की। ब्रिटेन में एक जगह पब्लिक प्रोग्राम था, मैंने कहा आपके देश में तो बहुत ज्यादा सफाई है, हमारे देश में थोड़ी गंदगी रहती है। हमारे प्रधानमंत्री ने अभी सफाई का अभियान चालू कराया है, वहां भी लोग एजुकेट हो जाएंगे सफाई के लिए, हो रहे हैं। तो आगे बैठने वाले एक दो लोग थे भारत वाले, उन्होंने बोला यहाँ बाहर की तो सफाई है, मन सबके बड़े गंदे हैं। भारत में बाहर थोड़ी गंदगी है पर मन अभी भी बहुत अच्छे हैं, है तो सत्यता। कितनी भी गंदगी आ गई हो लेकिन भारत इज ग्रेट। मैं तो सबको देखकर ये कह सकता हूँ कि भारत में जितनी खुशी का माहौल है, अभी भी शांति के वाइब्रेशंस हमारे यहाँ जितने हैं उतने संसार में अन्यत्र नहीं हैं। हमारे पास इसी ज्ञान सरोवर में हर वर्ष कम से कम 10-12 हजार विदेश के भाई बहने आते हैं, इंडियन मूल के भी और उन देशों के भी। हमारा शुरू हो जाता है वो दिसंबर से, अक्टूबर से शुरू हो जाएगा प्रोग्राम, अक्टूबर से और मार्च तक चलेगा, जिसमें विदेशियों को अवसर होता है यहाँ आने का। विशेष रूप से यहाँ रहते हैं और ये कैंपस भरा रहता है। मैं आपको एक छोटे से अनुभव की बात सुनाऊं। यहीं स्टेज पर 2 साल पहले की बात है, हमारे यहाँ रशिया में भी बहुत सारे सेवा केंद्र हैं, बहुत सेवा है वहाँ हमारी। जब से गर्बाचोव ने वो खोला था ना कम्युनिज्म का, रिलीजन के प्रति एकदम धूम मच गई थी वहाँ। तो वहाँ की 21 कन्याओं ने इस कार्य के लिए अपने जीवन को डेडिकेट किया, 21। आप देखते होंगे हमारे यहाँ सफेद वस्त्रधारी ये बहनें आपको दिखाई देती हैं, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है इस कार्यों के लिए। जैसे आपके यहाँ गुरुद्वारों में भी सेवादार होते हैं ना, और बहुत लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया होता है, ऐसे ही हमारे यहाँ भी इस ईश्वरीय कार्य के लिए बहुत लोग अपने जीवन को समर्पित करते हैं। इस समय तक लगभग 15,000 भाई बहनों ने अपना जीवन डेडिकेट किया है। उन 15,000 में लगभग 13,000 बहने ही हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी, वो बहने सभी धर्मों से, सभी जातियों से, हाईली एजुकेटेड और बहुत कम पढ़ी लिखी, हर जाति से हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि स्पिरिचुअलिटी है, आत्मिक भाव सिखाया जाता है, इसलिए हम में से किसी को भी ये पता नहीं होता कौन क्या है। क्लियर है ना, किस जाति से है, किस धर्म से, हमारे यहाँ वो चर्चाएं ही नहीं है। तो उनमें 21 कन्याओं में से 9 कन्याएं हमारे यहाँ आई थी। एक कन्या को कहा गया कि तुम अपना अनुभव सुनाओ, उसकी एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसने कहा मुझे भगवान की बहुत खोज थी इस जीवन में, और मैं भगवान को ढूंढने के लिए 4 बार भारत में आई थी। हम सब सामने बैठे थे, किसी ने उनसे पूछा अमेरिका क्यों नहीं गई। आप भी सोचो, अमेरिका का तो सबसे ज्यादा नाम है ना, ब्रिटेन क्यों नहीं गई। तो सोचने की बात है, अब उसको भी समझ में नहीं आया मैं क्या उत्तर दूं। उत्तर ये है, किसी को भी यदि संसार में भगवान की खोज हो तो वो कहाँ आएगा, भारत में। वो कॉन्शियसनेस में समाया हुआ है, वो उसको संकल्प ही नहीं आएगा कि अमेरिका में चलूं। किसी को अगर सत्य ज्ञान चाहिए वो भारत में आता है। बड़ी वंडरफुल बात है। विज्ञान का सारा ज्ञान विदेश से भारत में आया, बाद में भारत के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, लेकिन परमात्म ज्ञान भारत से संसार में फैलता है। आपने सुना हो लंदन के वो एक बहुत प्रसिद्ध वकील, नाम मुझे भूल जाता है, जिन्होंने किताब लिखी ए मंक हू सोल्ड हिज फरारी, बहुत अच्छी उसने किताब लिखी है। वो भारत में आया, जैकलिन या कुछ नाम था उसका, हाँ, तो वो भारत में आया, हिमालय में गया, कहीं उसे बहुत अच्छे गुरु मिले ढूंढते ढूंढते, और उसने 24 सिद्धांत तैयार किए मनुष्य जीवन के लिए, जिससे जीवन बहुत सुंदर चले। तो देखिए, संसार में किसी को शांति चाहिए वो भी टिकट भारत की लेता है, सत्ज्ञान चाहिए वो भी भारत में आके ढूंढता है, और भगवान चाहिए तो और कोई स्थान है ही नहीं। हम ऐसे एक महान देश के वासी हैं, सबको इस महान देश पर गर्व होना चाहिए। हमें भले ही हमारे यहाँ कुछ अभाव हैं, कुछ समस्याएं ज्यादा हैं, क्राइम ज्यादा है या गरीबी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये भारत पुनः सर्वोच्च स्थिति में पहुंचने वाला है, और इसके पीछे काम करेगी स्पिरिचुअल पावर। फिर से मैं वहीं आ जाता हूं, कलयुग का जब अंत होता है इस संसार में, इस सृष्टि चक्र में, तो देखिए ये कलयुग पुनः सतयुग में बदलने को है, होता है, क्योंकि ये चक्र चलता रहता है, इसका कभी एंड नहीं होता कि चक्र समाप्त हो जाए। सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग और पुनः सतयुग। अब कलयुग में है मनुष्य का ये वर्तमान हाल, जहां मनोविकार अति में है, पाप भी अति में है, क्राइम भी अति में है, और सतयुग में है देवत्व, जहां ये सब चीज नहीं है, एब्सोल्युटली इधर रात उधर दिन, इधर पूरा अंधकार उधर संपूर्ण प्रकाश है, इधर मनुष्य के चित्त में अज्ञान भरा हुआ है उधर ज्ञान का प्रकाश है। अब ये कैसे बदले, यही मुख्य बात है जिस पर हम आपको लाना चाहते हैं। तो कलयुग के एंड में स्वयं ज्ञान के सागर भगवान, जो हमारे परम पिता हैं, वो इस धरा पर आते हैं। आपने कहानी सुन ली होगी, ब्रह्मा तन में आते हैं और ज्ञान देते हैं, राह दिखाते हैं, एनलाइटन करते हैं हमें। उस ज्ञान से ये कलयुग का अंधकार समाप्त होता है, उस ज्ञान से मनुष्य को सच्ची राह मिलती है। ये कार्य इस समय चल रहा है। आप यहां सब आए हैं, देखो बहनों ने आपको कई बार निमंत्रण दिया होगा, दिया था या नहीं, या पहली बार में आ गए? कई बार कहा होगा चलो भाई जी चलो, बहुत अच्छा है, लोभ भी दिया होगा कि घूम भी आएंगे, पिकनिक हो जाएगी। आप क्यों आए यहां पता आपको? आप सभी के अंदर देवत्व है, सतयुग से चले आ रहे थे, देवता थे, वो खो गया, अब पुनः उसको प्राप्त करना है, एक चीज। दूसरी चीज, आप सभी पिछले कल्प में, इसको कल्प कहते हैं, चारों युगों का जो चक्र है, ठीक इसी समय भगवान से मिलने आए थे, पुनः आए हैं। भगवान आते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए, वो प्यार का सागर है, प्यार देने के लिए, वो सर्वशक्तिवान है अपनी शक्तियां देने के लिए। आप यहां आने का पर्पज अब समझते चलें। अभी आपने थोड़ा थोड़ा जान लिया होगा कि बहुत अच्छा है, ये सीखा, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो यहां से आप सीखें और साथ ले जाएं, प्रभु मिलन। रोज सवेरे आप इस मिलन को कर सकते हैं। ये राजयोग का मार्ग हमें यही सिखाता है कि हम अपने परम पिता से मिलें। आप सोचें, आप सभी बुद्धिमान हैं, वो बाप कैसा जो अपने बच्चों से कभी मिलता ही ना हो सकता है ऐसा? अगर हम कभी भगवान से मिले ही न होते तो हमारे मन में उससे मिलने की इच्छा भी न होती। लेकिन हर एक सोचता है कहीं ना कहीं उसे देख लें, कभी ऐसा हो जाए कि उससे मिलन हो जाए, क्योंकि हम उससे मिले थे, उसमें अपार सुख हमें प्राप्त हुआ था, उसने ही हमें सत्य ज्ञान दिया था, हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझाई थी, अब वो पुनः ये काम कर रहा है। इसलिए मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में कह देना चाहता हूँ, पहले तो पूछना चाहता हूँ, अपने परमपिता से मिलना चाहेंगे? जरा दिल की आवाज नहीं निकली, चाहेंगे? चाहेंगे। जैसे हमें उससे मिलने की इच्छा होती है, उसे भी होती होगी या नहीं? बाप और बच्चे खो जाएं, बाप को ज्यादा इच्छा रहती है मिलने की, बच्चे तो इधर उधर दूसरों के संबंध में आके भूल भी जाते हैं माँ बाप को। ये परम सत्य है कि भगवान भी हमसे मिलना चाहता है, लेकिन उससे मिलने के लिए कुछ थोड़ा सा करना पड़ता है। घर छोड़ने की बात नहीं, काम धंधा छोड़ने की बात भी नहीं, कुछ प्योरिटी को अपनाना होता है, क्योंकि वो सुप्रीमली प्योर है। हमें उससे मिलन के लिए अपने विचारों को, संस्कारों को प्योरिफाई करना होता है बस। तो मैं आपको बहुत ओपनली एक चीज बता दूं, भगवान जब आते हैं उस समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, सतयुग और कलयुग का मिलन वो समय चल रहा है। अब से 80 वर्ष पहले से भगवान का कार्य इस धरा पर चला था, उनका अवतरण हुआ था इस धरा पर, और उनका कार्य ये 100 वर्ष चलता है, 20 वर्ष और बाकी हैं। इसमें उन्होंने अनेक आत्माओं को प्योरिफाई कर दिया है, उनके अंदर देवत्व भर दिया है, स्पिरिचुअल पावर भर दी है, संपूर्ण प्योरिटी ला दी है। अब इस धरा पर, विशेष भारत में और फिर सारे संसार में, आपके देखते देखते स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन होगा अगले 10 सालों के अंदर। एक बहुत जबरदस्त आध्यात्मिक क्रांति होगी, जिसमें हर व्यक्ति अपने को पहचानेगा, अपने अंदर छुपे हुए प्योर संस्कारों को पहचानेगा और देवत्व की ओर चलेगा। और ये 20 साल पूरे होते ही हम सभी सतयुग की ओर अग्रसर हो जाएंगे। इस संसार में एक महान परिवर्तन होने जा रहा है, आप सब देखते होंगे। मैं तो बहुत सारे जजों से बात भी करता हूँ, कर चुका हूँ। अब से 10 साल पहले जितने डिवोर्स के केसेस जाते थे, 10 साल में कितनी वृद्धि हो गई? हो गई या नहीं? अति। घर घर में संघर्ष हो रहा है। मुझे एक जज साहब ने बताया, मुझे बहुत उनको भी हंसी आई और हम सब के लिए हंसने की बात है, कोई दो की मैरिज हुई, बड़े ऑफिसर आईएएस किया दोनों ने, एक दिन ही चली, केवल एक दिन। आजकल एक दिन शादी बहुत चल रही, डिवोर्स का केस फाइल हो गया, 15 साल चला। देख लो आप, उसने कहा जब फैसला हुआ कि आप लोगों ने मेरी लाइफ को स्पॉइल कर दिया, क्योंकि 15 साल संघर्ष में बीत गए ना, कहां मनुष्य जीवन बहुत सुखों के लिए, कहां पति पत्नी एक दूसरे के गुड फ्रेंड, और कहां आज की ये स्थिति। तो ये खेल बिगड़ता जा रहा है। अब पानी नाक से ऊपर जाने को है, इसलिए ये युग बदलेगा, ये युग बदलेगा। लेकिन ये परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत जबरदस्त होगी, आकाश भी बदलेगा, सब ग्रहों की लोकेशन बदल जाएंगी, धरती बदलेगी, जल और वायु बदलेगी, सूरज में परिवर्तन होगा, बहुत बड़ी चीज इस धरा पर होने जा रही है। इसमें विज्ञान ने जो एटम और हाइड्रोजन बॉम्ब्स बनाए हैं वो भी मुख्य काम करेंगे। तो हम एक ऐसे सुंदर समय पर स्थित हैं जहां हम अपने देवत्व को पुनः उजागर कर सकते हैं और परमात्म मिलन का सुख ले सकते हैं। आप सब यहाँ आए हैं, सबने बहुत एंजॉय किया ही है, ये स्थान ही ऐसा है। कोई मेरे से पूछ रहे थे कल, यहाँ तो वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं घर जाके, तो मैंने उनको कहा, वो आप सबको भी कहना चाहता हूँ, वाइब्रेशंस को क्रिएट करने वाले हम हैं। ये जो स्थान है अब से 20 साल पहले ये ऐसा भयानक जंगल था जहां भालू और चीतों के अलावा कोई नहीं रहते थे। जब हम लोग पहली बार आए, पैदल आना पड़ा वहां से, 4 किलोमीटर है पांडव भवन, तो बहुत थक गए, सोचा दोबारा कभी नहीं आएंगे, न सड़के न कोई व्हीकल कुछ नहीं। लेकिन फिर हमें यहाँ आना पड़ा, कंस्ट्रक्शन हुआ, कंस्ट्रक्शन भी नहीं होता था, यहाँ पहाड़ियां ऐसी थी कि एक रूम भी नहीं बन पाए। फिर अहमदाबाद के आर्किटेक्ट आए, उन्होंने कहा पहले सड़के निकालो, सड़के बनाई, सड़के बनते ही रास्ता दिखने लगा, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है। तब बना, जब बन रहा था तब भी यहाँ रोज भालू आ जाते थे रात को, एक बार तो 2 चीते भी आ गए। यहाँ वाइब्रेशंस क्रिएट किए गए, 400 लोग रहे यहाँ कंस्ट्रक्शन में जो वॉलंटियर्स थे, सेवादार थे, उन्होंने सारा काम किया, वाइब्रेशंस क्रिएट किए गए। मैं यहीं था तब, मुझे भेजा गया था, हमने सबको अच्छा योग सिखाया और शाम को और सवेरे एक एक घंटे बहुत अच्छा योग अभ्यास यहाँ हुआ ताकि यहाँ के वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हो जाएं। तो हम वाइब्रेशंस के क्रिएटर हैं। आप अपने घर में, अपने कचहरी में वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आप सभी को उस दिन भी बताया, फिर वो बात याद दिला देता हूँ, एक चीज में बहुत शक्ति है। देखिए, मैंने अब से बहुत साल पहले, 45 साल हो गए होंगे, एक सुंदर बात सुनी, समस्याएं क्या हैं? उत्तर आया, ये ईश्वरीय महावाक्य थे, समस्याएं और कुछ नहीं कमजोर मन की रचना है। मैंने इस पे बहुत अच्छा विचार किया, छोटा था मैं, लेकिन मेरा चिंतन हुआ, कुछ घटनाएं देखने में आती थी कि समस्याएं होती नहीं, मनुष्य कमजोर मन से गुस्सा कर लेता है, एक दूसरे को मारपीट कर देता है। दिल्ली में हुआ था, एक दूसरे को चाकू मार दिए छोटी सी बात पर, एक की मृत्यु हो गई, दूसरे को उम्र कैद हो गई, 2 आइसक्रीम बेचने वाले। तो समस्याएं कमजोर मन से पैदा होती हैं। तो उस आधार पर मैंने कार्य शुरू किया अपने जीवन में कि अगर कमजोर मन समस्याओं को क्रिएट करता है तो एक पावरफुल माइंड उन्हें नष्ट भी करेगा। तो मैंने पावरफुल थॉट्स के द्वारा अनेक चीजों को ठीक करने के अनुभव किए और एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस का एक लंबा चौड़ा अध्याय मेरे जीवन में चला, वही मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सवेरे उठ ते ही आप अपने को ये रिमाइंड कराना, मैं ऑलमाइटी की संतान हूं, मास्टर ऑलमाइटी हूं। इससे आपसे पावरफुल वाइब्रेशंस फैलेंगे और वो अनेक समस्याओं को नष्ट करेंगे। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये 2 बातें आप याद करके कार्य पर जाएं, स्टडी करें, ये 2 बातें याद करके करें, बहुत अच्छे अनुभव आपको होते रहेंगे। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, इस समय अपने मन को थोड़ी देर के लिए भी रेस्ट देना परमावश्यक है। मन को हम लगातार यूज कर रहे हैं, शरीर को भी रेस्ट देते हैं, लेकिन मन को रेस्ट नहीं देते, थोड़ा थोड़ा मन को रेस्ट देंगे आप। इसलिए अपना जीवन ऐसा जिएंगे, बस ये एक सुंदर बात आपको सुनाता हूं फिर आपके क्वेश्चंस। इजी गोइंग नेचर बनानी है अपनी, ताकि जीवन में छोटी मोटी बातें टेंशन न दें। इजी गोइंग, सरल स्वभाव पसंद है। कई लोगों की नेचर होती है हर बात को टेंशन में बदल देना, हर बात को क्रिटिकल कर देना। थोड़ा अपने को लाइट करें। बहुत सारी बातें जीवन में ऐसी हैं जिनको लाइट लेने से वो खत्म हो जाती हैं। बहुत थोड़ी बातें ऐसी होती हैं जो सीरियसली ली जाती हैं, जिन पे सोचा जाता है, जिनको हल किया जाता है। बाकी बहुत सारी चीजें बहुत सारी बातें ऐसी हैं आप उन्हें इग्नोर करो, वो खत्म हो जाएंगी, कम्युनिकेट ही ना करो उनसे। तो एक बहुत अच्छी चीज आप यहां से अपने साथ लेकर जाएं, हमें सहज भाव से जीवन जीना है। सहज भाव से जीने से समस्याएं भी सहज हो जाएंगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आप अपने परिवार को भी बहुत कुछ दे सकेंगे। ऐसा ना हो कि आपका जो व्यस्त जीवन है, कोर्ट से रात को 12 बजे आ रहे हैं, आके खा पी के सो गए, सवेरे देर से उठे तो बच्चे स्कूल में चले गए, कॉलेज में चले गए, उनसे मिलना ही नहीं हो रहा है। ये लाइफ बहुत अच्छी लाइफ नहीं है। भले ही जरूरत हो गई है, पर अपनी लाइफ को ऐसा मैनेज करें आप अपने को भी समय दे सकें, थोड़ा अपने परिवार को भी समय दे सकें, लाइफ को एंजॉय भी कर सकें। अपने से कई सोशल वर्क में भी लगे रहते हैं, उसमें भी टाइम दे सकें, तो आप बहुत अच्छा संसार के लिए आइडियल बन सकेंगे, एग्जाम्पल सेट कर सकेंगे। और बहुत ही सुंदर एक बात है, आप जानते हैं सब अच्छी तरह, जब महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया, कौन सबसे ज्यादा उनके साथ आए थे? सब वकील आए थे या नहीं? क्योंकि पावर रहती है, कानूनों का ज्ञान होता है, डर नहीं रहता है। आप सब भी इस भारत को पुनः देवत्व में बदलने के लिए, इस भारत को मानता के शिखर पर ले जाने के लिए, इसे विश्व गुरु बनाने के लिए अब एक स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन का हिस्सा बन जाएं। बोलो क्या कहेंगे? ठीक है ना? तो देखो ये संसार भारत के आगे नमन करेगा, ये संसार भारत के समक्ष। उसकी शुरुआत हो चुकी है और वो अब तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। ओम शांति। अब आपके क्वेश्चंस आए हैं कुछ?
आप सब भाई साहब को अपने अपने प्रश्न दे दीजिएगा। आदरणीय भ्राता जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने नवयुग की तरफ हम कैसे बढ़ें, कैसे नवयुग के लिए अपने आप को योग्य बनाएं, उसके लिए सुनाया। हम सब दिल से भाई साहब का बहुत 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 आभार करते हैं। और भी किसी के कोई प्रश्न हो तो प्लीज दे दीजिएगा।
आप पढ़िए।
मैं भाई साहब के लिए एक बात कहना चाहूंगी। पहले हम ही हैं जो अपने जीने का अलग अंदाज रखते हैं। लोग ढूंढते हैं जिसको, मंदिरों में मस्जिदों में, उस परम शक्ति को हम अपने दिल के पास रखते हैं। उस परम शक्ति को हम तो अपने दिल के पास रखते हैं। और आप लोग भी कैसे रख सकते हो, उसकी बहुत सुंदर विधि आदरणीय भ्राता जी ने बताई। एक प्रश्न आया है भ्राता जी, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ और सुप्रीम सोल शिव बाबा से मेरा कॉन्टेक्ट हो रहा है, इस तरह से जो भी फीलिंग्स आएंगी क्या वो भ्रमात्मक होंगी? जैसा कि आपने बताया कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और शिव बाबा से मेरा संबंध हो रहा है, ये एक प्योर फीलिंग होगी, भ्रमात्मक फीलिंग होगी?
हाँ, क्लियर तो नहीं लिखा पर मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आत्मा अब तो प्योर नहीं रही है, लेकिन आत्मा मूल रूप से बहुत प्योर है, परफेक्टली प्योर। तो हम अपने स्वरूप को याद करते हैं, आई एम सुप्रीमली प्योर सोल। और जब परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, अगर हमारा उससे ठीक कनेक्शन जुड़ता है, तो उसके प्योर वाइब्रेशंस हमें आने लगते हैं। तो ये वाइब्रेशंस परमात्मा की ओर से आएंगे। और जैसा कि प्रश्न में शुरू में लिखा है, अगर ये कंसंट्रेशन थोड़ी देर भी हो जाए, 10 मिनट आप इसकी गुड फीलिंग में रहें, तो मन को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, एक परम आनंद की अनुभूति हो जाएगी और उससे हमारी इनर प्योरिटी बढ़ती जाएगी। प्रैक्टिस से आपको इसके अच्छे अनुभव होंगे।
एक और प्रश्न है, अगर हम ईश्वर की संतान हैं, तो उसके सब गुण और अवगुण हमारे अंदर हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर अवगुण रहित है?
परमात्मा के अवगुण नहीं होते, ये बात ही गलत हो गई। वो तो सागर है, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली प्योर है, जो संपूर्ण पवित्र है, और जो परफेक्ट है उसमें अवगुण नहीं होते। ये प्रश्न किसी ने सोच समझ के लिखा है, हम उसके संतान हैं, हमारे अंदर अवगुण आ गए हैं, तो ऐसा नहीं कि ये अवगुण उसके आए हैं हमारे अंदर, ये अवगुण सद्गुणों का अभाव है। मान लो किसी के पास सहनशीलता थी, अब सहनशीलता कम हो गई तो गुस्सा आने लगा, तो ये गुस्सा परमात्मा का अंश नहीं है, ये हमारा जो सहनशीलता का गुण था, क्योंकि वो कम हो गया, उसके कारण क्रोध आ गया, इसलिए विकारों के कारण अवगुण आए हैं। जैसे जैसे हम पवित्र बनते जाएंगे, ये अवगुण स्वतः ही समाप्त होते जाएंगे। परमात्मा तो केवल गुणों का सागर है, अवगुणों का उससे कोई नाता नहीं है।
एक और प्रश्न है कि कुंडलिनी जागृत करना और राजयोग में क्या अंतर है?
देखिए, ये कुंडली जागरण, जिसने भी ये प्रश्न पूछा है, सब तो इसके बारे में नहीं जानते होंगे। योगिक जो हमारी नॉलेज है भारत की, उसके अनुसार इस शरीर में 7 चक्र होते हैं, और सबसे नीचे जो मूलाधार चक्र होता है, उसमें कुंडलिनी एक 3.5 राउंड में सोई रहती है, उसको जगाना होता, वो एक अलौकिक शक्ति माना जाता है। उसको जगाने के लिए भारत में बहुत सारी साधनाएं चलती रही हैं, किसी की जगी किसी की नहीं जगी। उसके जगने से जीवन डिवाइन हो जाता है, प्योरिटी बढ़ जाती है, आनंद की स्थिति रहने लगती है। राजयोग के द्वारा भी ऑटोमेटिकली कुंडलिनी जागरण हो जाता है, क्योंकि हमारा बुद्धि योग ऊपर जाता है, तो कुंडलिनी का जो प्रवाह है वो भी ऊपर की ओर हो जाता है और सहज जग जाता है। इसलिए आप देख चुके होंगे, यहाँ बहुतों के जीवन में डिविनिटी है, बहुत प्योरिटी है, सद्गुण है, वो कुंडलिनी जागरण के ही स्वरूप है।
ये प्रश्न आया है भाई सर, न्याय व निर्णय में क्या अंतर है?
अब ये तो आपका आपके लिए प्रश्न है। न्याय तो आप लोग देते हैं, किसी ने कुछ गलती की है, किसी ने किसका मर्डर कर दिया है, उसको क्या सजा देनी है, वो न्याय कहलाता है। और निर्णय हमारे रोज के जीवन से जुड़ा हुआ है, हमें 2 काम करने हैं, हमें 2 तरफ जाना है, इधर जाऊं या इधर जाऊं, ये काम करूं या ये काम करूं, ऐसे बोलूं या ऐसे बोलूं, ये निर्णय कहलाता है, जो रोज के जीवन में प्रैक्टिकल में चलता रहता है। हरेक को रोज 50 निर्णय भी करने हो सकते हैं, लेकिन न्याय तो एक अलग चीज है, जो किसी घटना के बाद जजेज को करना होता है।
एक प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा को भगवान श्री विष्णु का साक्षात्कार हुआ था, जबकि विष्णु तो देवत्व थे, सर्वशक्तिवान नहीं थे, अर्थात परमात्मा नहीं थे।
बिल्कुल ठीक है, ब्रह्मा बाबा को सबसे पहले विष्णु का ही साक्षात्कार हुआ था, और इसका कारण ये था कि परमात्मा तो ऑलमाइटी है, वो निराकार है, उसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था ब्रह्मा बाबा को। अगर वो उनके सामने आ भी जाता तो उसके बारे में वो अनभिज्ञ थे, वो विष्णु के भक्त थे, और जीवन भर श्री विष्णु जी का साक्षात्कार करना चाहते थे। उसके साक्षात्कार से ही उनको तृप्ति हुई, क्योंकि वो उनके भक्त थे, उनसे इस तरह जुड़े हुए थे इमोशनली, इसलिए उनको उनका ही दीदार हुआ। साक्षात्कार किसी भी भक्त को उसका ही होता है जिससे वो जुड़ा हो, जिसकी वो भक्ति करता हो, जिससे वो बहुत प्यार करता हो। इसलिए ऑलमाइटी का साक्षात्कार नहीं हुआ था, विष्णु का ही हुआ था।
अब ये प्रश्न है, परमपिता परमेश्वर की अनुभूति व कृपया वर्षा को अनुभव प्राप्त करने हेतु आज्ञा चक्र को सरलता से खोलने की विधि क्या है?
राजयोग। जितने श्रेष्ठ कर्म करेंगे परमात्मा के कृपा पात्र बन जाएंगे। कौन से चक्र को खोलना? आज्ञा बहन जी,
आज्ञा चक्र।
आज्ञा चक्र यह माना जाता है वो बुद्धि का प्रतीक है। वैसे तो मेडिकल साइंस के अनुसार तो यहाँ पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उनके बीच में, लेकिन जो हमारी योगिक सिस्टम है उसमें यह आज्ञा चक्र माना जाता है। ज्ञान को संपूर्ण रूप से प्राप्त करना, ये है आज्ञा चक्र को खोलना। बाकी सभी काम योग अभ्यास से स्वतः ही हो जाते हैं। परमात्मा अनुभूति, जैसे मैंने कहा, आप रोज सवेरे परमात्मा मिलन का अनुभव भी कर सकते हैं। रोज सवेरे आपको यह आभास हो सकता है कि हम भगवान से मिले, ये राजयोग से होगा।
ये पूछना चाहते हैं भाई साहब, हमारे दशकों अर्धशतक पुराने संस्कार जिसमें हम अपने इष्ट देव कोई धर्म ग्रंथ का चिंतन करते हैं, इन पुराने संस्कार की जगह परम पिता ज्योति स्वरूप को याद करने में कठिनाई अनुभव होती है, कृपया उसका कुछ उपाय बताइए।
देखिए, लंबा समय किसी ने हनुमान जी की भक्ति की हो तो हनुमान जी तो उनको सामने दिखता रहेगा रोज रोज, लेकिन अगर कहा जाए ज्योति स्वरूप निराकार पर ध्यान लगाओ तो ये काम थोड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन अभ्यास से ये सब भी सहज हो जाता है। और जो सुप्रीम योग है, जो सुप्रीम ध्यान है, वो निराकार सत्ता पर लगाने को ही कहते हैं। बाकी सभी देवी देवताओं के क्योंकि चित्र हैं, उनके शरीर हैं, उनको याद करना, उनपे एकाग्र होना, ये तो बहुत सहज बात है ही, लेकिन प्रैक्टिस से ज्योति बिंदु पर मन बुद्धि को एकाग्र करना भी सरल हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है।
ये जानना चाहते हैं, क्या दादा लेखराज जी ही शिव बाबा है? क्या लेखराज बाबा ही शिव बाबा परमात्मा है?
नहीं, वो तो देहधारी थे ना, और आपने यहाँ सुन ही लिया होगा, और ये एक यूनिवर्सल सिद्धांत है, कोई भी देहधारी भगवान नहीं होता, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु शंकर ही क्यों ना हो, भगवान इन सब से परे निराकार हैं।
इन्होंने पूछा, किसी ने अगर मेरे ऊपर कोई कमेंट किया कि आप सभी आत्मा भाई भाई समझते हैं, तो कॉकरोच कीड़े मकोड़े मच्छर सब में को परमात्मा ने बनाया है, तो वो भी क्या भाई भाई हैं? आप इनको भी प्यार से कहिए, इनसे फिर डरते क्यों हो, इन्हें मारते क्यों हो?
पहली बात तो ये मच्छरों को भगवान ने नहीं बनाया, भगवान ने तो देवताओं को बनाया था। ये तो गंदगी की रचना है, इसके पीछे तो बहुत बड़ी विज्ञान है, भगवान इनको नहीं बनाता। और वैसे भी नेचुरल है, कोई आपको काटे तो आप उसको अपना फ्रेंड तो नहीं मानेंगे, उससे तो बच के रहेंगे। पहले तो हमें फ्रेंड बनाना है मनुष्यों को, जीव जंतु तो आप ही हमारे फ्रेंड बन जाएंगे, शक्ति यही है कि मनुष्य में अगर सच्चा प्रेम हो जाए तो उसके वाइब्रेशन से जीव जंतु भी हमारे गुड फ्रेंड बन जाएंगे, शेर भी हमारा गुड फ्रेंड बन जाएगा। पर यहाँ मनुष्य में ही शत्रुता बहुत है, पहले तो हमें वो मिटानी है ना, तो जीव जंतुओं की शत्रुता तो आप ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन उनमें से कुछ में आत्मा है, लेकिन उस आत्मा का जो लेवल है वो बहुत छोटा होता है। अभी मान लो काक्रोच है या कुत्ता है, आत्मा तो उसमें भी है लेकिन उसकी मन बुद्धि का लेवल बहुत छोटा है। इसलिए मनुष्य के वाइब्रेशंस का इफेक्ट ही इन जीव जंतुओं पर पड़ता है। आप देख सकते हैं किसी घर के बहुत अच्छे वाइब्रेशंस हों, वहां रहने वाली बिल्ली भी उसी तरह की होगी, और किसी घर के वाइब्रेशंस वायलेंट हों, आप चेक कर सकते हैं बिल्ली भी वायलेंट होगी। इसलिए मनुष्यों के अंदर प्यार बढ़ाने की आवश्यकता है।
ये जानना चाहते हैं, अगर ये माने कि ड्रामा है तो क्या हर घटना रिपीट क्रम अनुसार होती ही है?
हाँ, यही है कि हर घटना के पीछे, हर घटना में एक सीक्वेंस है, कोई भी घटना अचानक नहीं हो रही है। ये जो विश्व है इसकी तुलना एक नाटक से की जाती है, और ये सब्जेक्ट थोड़ा डीप है, आप जैसे जैसे ज्ञान की स्टडी आगे बढ़ाएंगे आपको क्लियर होगा कि ये संसार एक नाटक है। बोलो बोलो, एज इट इज ही रिपीट होगा। जैसे फिल्म कोई बन जाए तो जितनी बार चलाएंगे वो रिपीट होगी ना, ऐसे ही विश्व का ड्रामा भी जब रिकॉर्ड हो गया है तो ये रिपीट ही होता है।
ये जानना चाहते हैं, आपके अनुसार संगम युग चल रहा है, सृष्टि अंत में आपके अनुसार अभी कितना समय और लग सकता है?
मैंने बता दिया था ये पुरुषोत्तम संगम युग 100 वर्ष का है और 20 वर्ष इसके बाकी हैं।
ये जानना चाहते हैं भाई साहब, हम बाबा को कैसे याद करें, सुबह से शाम तक का नियम बताएं, क्या हम और भगवान की पूजा आदि छोड़ दें?
ये तो आपको यहाँ कई क्लासेज में मिल गया है। जिन देवी देवताओं की आप पूजा पाठ करते हैं, यहाँ ये बताया जा रहा है अब उन जैसा बनने का संकल्प करें। जो देवत्व उनमें था, जिनके कारण उनकी पूजा हो रही है, वो सब सुंदर धारणाएं अपने जीवन में अपनाएं, और ये सब होता है योग अभ्यास से। जब हम सर्वशक्तिवान से जुड़ जाते हैं, उसकी शक्तियां हम में आने लगती हैं, तो ये जो देवी देवता हैं जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, इनका देवत्व हम में आने लगता है। इसलिए आपको फिर उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन जैसा बनने के विचार रहेंगे।
ये प्रश्न भी ध्यान से संबंधित है भाई साहब। ध्यान हृदय पर लगाने के लिए कई धर्मों में कहा गया है, क्योंकि मनुष्य का पहली बार दिल धड़कता है, और जब दिल धड़कना बंद हो जाता है तो मनुष्य मर जाता है, ऐसा हर जानवर में भी होता है।
तो दिल पर ध्यान लगाने से दिल धड़कना चालू तो नहीं हो जाएगा पुनः? इसलिए ध्यान उस पर लगाना है जिसने जीवन दिया है। इस जीवन में जो दिल की रचना है, दिल पर ध्यान लगाने की बात इसलिए नहीं थी कि पहले दिल धड़कता है। दिल पर ध्यान लगाने की प्रथा वहां से शुरू हुई कि कई आचार्यों ने ये मान्यता दी थी कि आत्मा का निवास दिल में है, प्रभु सबके दिल में बसते हैं, इसलिए दिल पे ध्यान लगाओ। प्रभु दिल में बसते हैं इसका अर्थ ये होता है, जैसे आप कहेंगे आपका अपने बच्चे से बहुत प्यार है, मेरा बच्चा तो मेरे दिल में बसता है, समझ गए ना इसका अर्थ? दिल में रहेगा नहीं, वो बैठा नहीं है, ये प्यार है। ऐसे ही भगवान से इतना प्यार था कि भक्तों ने कहना शुरू किया भगवान तो हमारे दिल में रहता है, इसलिए दिल पे ध्यान लगाने की बात चालू हुई। लेकिन ध्यान हमें उस पे वहीं लगाना है जहां वो है।
ये है कि सभी धर्मों में मोक्ष, निर्वाण, जन्नत की बातें कही गई हैं, जबकि यहाँ पर बार बार जन्म लेने की, हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है।
देखिए, अगर मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता होता, आप सभी बुद्धिमान भाई बहने बैठे हैं, विचार करो क्या आपकी इनर कॉन्शियंस ये स्वीकार करती है कि पिछले जन्म में हम कोई जानवर थे, किसी भी की भी करती है? इम्पॉसिबल। हम देवता थे और देवताओं से देवता जन्म लेते लेते अब यहां मनुष्य बने हैं। मनुष्य आत्मा पशु योनि में जाती ही नहीं, सब जीव जंतुओं की आत्मा बीज की तरह हैं। जैसे एक बीज से एक ही पौधा निकलता है, चने के बीज से गेहूं का नहीं निकलेगा, वैसे ही हर जीव की आत्मा के संस्कार अलग अलग होते हैं। ये थोड़ा डिटेल का विषय है, आप जान सकते हैं। और क्या पूछा? मोक्ष। मुक्ति की बात तो बहुत अच्छी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जिस प्रोफेशन में हैं, कोई जज हैं, कोई वकील हैं, आप इस धंधे को छोड़ के घर में बैठना पसंद करेंगे क्या? अब हम कुछ नहीं करते, घर में बैठेंगे शांति से, करेंगे? ह्यूमन नेचर ही नहीं है इनएक्टिव होना, वो एक्ट में ही एंजॉय करता है। करता है या नहीं? एक्ट करना आत्मा का संस्कार है। मुक्ति तो ऐसे है जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल निठल्ला हो और घर में सोया रहे। मैं थोड़े टाइट शब्द बोल रहा हूं, मुक्ति एक बहुत अच्छी बड़ी चीज मानी गई है। मुक्ति का अर्थ है आत्मा ही शरीर छोड़कर अपने परम धाम में जाकर निवास करे लंबे काल तक, और ये स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन जो हीरो एक्टर हैं इस विश्व के नाटक के, उन्हें यहाँ आना ही होता है। आप सभी तो हीरो एक्टर हैं ना, हैं या नहीं? अच्छे काम करने वाले हैं ना। कुछ न करना तो कुछ भी नहीं है, श्रेष्ठ कर्म करना उसका ही महत्व है ना। इसलिए मुक्ति है निर्वाण धाम में रहना, लेकिन उससे कहीं महान बात है इस सृष्टि पर आकर महान कार्य करना। इसलिए यहाँ पर इसको महत्व दिया जाता है। बाकी मुक्ति और मोक्ष भी एक अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़े प्रयास की जरूरत है। बिल्कुल निसंकल्प हो जाना, सभी पाप कर्मों को योग बल से नष्ट कर देना, लेकिन उससे श्रेष्ठ स्थिति है श्रेष्ठ कर्म करना। ये दो विचार पहले से ही हमारे आचार्यों और ऋषियों के बीच रहे हैं। कुछ लोगों ने माना था कि मोक्ष होने के बाद हमें वापस नहीं आना पड़ता, लेकिन दूसरी मान्यता ये रही कि मोक्ष कुछ समय के लिए होगा, फिर हमें वापस आना पड़ेगा। पिछले तर्क शास्त्रियों ने ये तर्क दिए कि अगर हम मोक्ष से आते ही नहीं तो मोक्ष की इच्छा क्यों होती है। ये बहुत सुंदर तर्क था। इसलिए मुक्ति होती है फॉर टाइम बीइंग, किसी को 5000 साल, किसी को पूरा कल्प, लास्ट में आत्मा आती है, किसी को थोड़ा समय, दोनों स्थितियां हैं।
ये पूछना चाहते हैं भाई साहब, डायनासोर प्राणी को लाखों करोड़ों साल बताया जाता है, क्यों? जबकि चक्र का समय केवल 5000 साल का है, वैज्ञानिक कारणों अनुसार डायनासोर लाखों वर्ष बताया गया।
अब देखिए, ये तो वैज्ञानिकों की खोज होती है, और वैज्ञानिकों की खोज के बारे में आप सबने सुना होगा, आज की खोज कल की इग्नोरेंस बन सकती है। नई नई खोजें होती रहती हैं, और ये काल ऐसा समय है, ये काल चक्र ऐसी चीज है जिसको मनुष्य अंदाज तो लगा सकता है। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ बहुत आते रहते हैं, पर ये संभव है कि त्रेता के अंत में ऐसे बड़े जानवर यहाँ रहे हों। और कई वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जब क्लाइमेट बदलता है तो कई जीव जंतुओं के आकार भी बदल जाते हैं। इसलिए लाखों वर्ष की बात नहीं, मैंने तो आपको बताया भगवान ने सृष्टि चक्र को 5000 साल में ही बांटा है, लेकिन यह हमेशा चलता रहता है। ऐसा नहीं कि संसार 5000 साल का है, संसार तो अनंत काल से चलता आ रहा है। इसलिए इसके बारे में रिसर्च है और नई नई रिसर्च होती रहती है। हमारे यहाँ आने वाले स्टूडेंट भी कई इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। एक तो बहुत अच्छा साइंटिस्ट हमारे यहाँ आता है, युवक है, उसने सब्जेक्ट ही ये लिया हुआ है और थोड़े ही समय में वो इस पर अपनी पूरी थेसिस ला के सबके सामने रख देगा।
ये जानना चाहते हैं भाई साहब, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे माफ करते हुए बताएं कि गर्भ गीता, गुरु गीता में और जो भी बुक्स आदि उनमें लिखा है कि 84 लाख योनियां होती हैं। मैंने ये कभी पढ़ने लिखने या सुनने में कभी नहीं आया, केवल 84 जन्म होते हैं कि मानव का मानव में ही होता है। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि गर्भ गीता या कर्मों की जो भी बुक्स हैं क्या वो ठीक है?
देखिए, हमारे शास्त्रों में सभी जगह ये मान्यता रही ही है कि मनुष्य 84 लाख योनि लेता है, ये रही है, बहुत सारी किताबों में लिखा है। एक ही मत सवाचारियों का रहा था क्योंकि इस पर कभी किसी ने चिंतन किया नहीं, लिखा है उसको मानते आए। लेकिन आप सोचें, मेरे साथ आप सभी चिंतनशील बैठे हैं, विचार करें, अगर मनुष्य, अटेंशन से सुनेंगे, अगर मनुष्य अपने पाप कर्मों का फल 84 लाख योनियों में भोग आया तो मनुष्य योनि में भोगनाएं क्यों हैं? एक ही बात पर आप विचार करें, एक बच्चा जन्म लेते ही दुखी क्यों है? एक मनुष्य थोड़ी आयु होते ही बहुत कष्ट क्यों पा रहा है? अगर वो 84 लाख योनियों में सब कुछ भोग के आ गया, इसीलिए तो गया था ना कि सब पाप कर्म भोग आए। आप इस पे चिंतन करना, अब भगवान ने आकर ये सद्विवेक दिया कि तुम 84 लाख योनियों में नहीं जाते, ये योनियां हैं, लेकिन तुम तो देवता थे और मनुष्य मनुष्य ही रहता है सदा।
ये जानना चाहते हैं भाई साहब कि अगर हमसे कोई गलत कर्म होता है तो क्या हमारी अंतरात्मा हमें सचेत करती है?
करती है, गलत कर्म करने से पहले भी करती है, ये सबको अनुभव होगा, क्योंकि आत्मा में देवत्व तो छुपा हुआ है ना। हम कहीं भी कुछ गलत काम करने जा रहे हो तो एक आवाज अंदर से तो आती है, नहीं आती है या नहीं आती है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं और फिर वो कर्म कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी प्योरिटी को बढ़ाएंगे, सुप्रीम से जुड़ेंगे, तो हमें वो आवाज बहुत क्लियर आएगी और उसको सुनने की शक्ति भी होगी, उसको मानने का बल भी होगा।
ये प्रश्न आया है, अपने मन में जो विचार आते हैं वो अपने कर्मों का फल है या हमारे हाथ में है, हम क्या विचार करें?
देखिए, जो भी हमें विचार आ रहे हैं उसके बहुत सारे कारण, हजारों कारण हो सकते हैं। किसी ने आपको कुछ कह दिया है, उसके विचार चल रहे हैं। कल आपके काम में कुछ गड़बड़ हो गई, उसके विचार चल रहे हैं। कोई आपसे गलती हो गई, किसी परिवार वाले से गलती हो गई, बच्चों से कुछ हो गया, ये विचारों के अनेक कारण होते हैं। लेकिन ये सत्य बात लिखी है कि अगर मनुष्य श्रेष्ठ विचार क्रिएट करना सीख ले, जो पावर हम में है, तो वो अनेक विचारों को समाप्त कर सकता है। इसलिए माइंड पावर ऑफ थॉट है और हम स्वयं विचार क्रिएट कर सकते हैं, वो करने ही चाहिए। बस बहुत हो गए,
दो तीन क्वेश्चन सर। ये आज जो आपने सुनाया उससे संबंधित एक प्रश्न आया है, मान्यवर हमारे देश 1100 वर्ष करीब गुलाम रहा, तो ये जानना चाहते हैं भाई साहब कि इन सब हालातों में 1947 में भारत जब आजाद हो गया और तब से परिवर्तन ऐसा दिखाई देता है, लेकिन क्या इन हालातों में सत्युग के चांसेस दिखाई देते हैं?
नहीं, देखिए आप सोच रहे होंगे जब से भारत आजाद हुआ गिरावट आती ही गई, 1192 में पृथ्वीराज पे मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और उसके बाद से मुस्लिम राज यहाँ स्थापित हुआ था। क्योंकि ये कलयुग चलता आता था, इसमें गिरावट आती ही रही। चक्र है ना, अब इस चक्र पर ध्यान दें, गिरावट आती ही रही और कुछ क्षेत्रों में अभी भी गिरावट आती ही रहेगी, लेकिन दूसरी ओर उत्थान का कार्य हो रहा है। एक ओर अंधकार गहरा होता जा रहा है, दूसरी ओर स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा प्रकाश भी हो रहा है। तो ये अंधकार समाप्त होगा, प्रकाश आएगा, कलयुग समाप्त होगा, सत्ययुग आएगा। आपको ये देखने से अवश्य लगता होगा दिनों दिन खेल बिगड़ता ही जा रहा है, कैसे आएगा सत्ययुग, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया है, ये एंड होगा वो आएगा, ये तो श्योर है। रात के बाद दिन आता ही है। अब कोई काली रात को देखकर कहे कि दिन तो आएगा नहीं, ये तो नहीं होगा, दिन तो आएगा, अच्छे दिन तो आएंगे, भले ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा हो अभी ना आ रहे हो, पर आएंगे तो जरूर।
बाकी जो क्वेश्चंस हैं कुछ कुछ सेम ही है जो आंसर्स आप दे चुके हैं।
ठीक है, अभी समय भी हो गया है, चलिए।
भ्राता जी ओम शांति। भ्राता जी ओम शांति।
कौन बोल रहे हैं?
पीछे से भाई सर।
भ्राता जी ओम शांति
बोलो।
भ्राता जी, बहुत से सवालों के जवाब वो मिल गए हैं, लेकिन कुछ बहन भाई हैं वो चाहते हैं आपसे सीधा माइक के जरिए सवाल पूछना। तो मैं जो भाई पूछना चाह रहे हैं एक दो, उनको मैं माइक दे रहा हूँ, वो अपना सवाल आपसे पूछेंगे, उसके बाद आप समाप्त करें।
टाइम तो बहुत हो गया, पहले इनको पूछने दो, आप बिना माइक के पूछ लो, आपकी आवाज तेज है। बोलने दो, बोलने दो, बोलिए। बढ़ती जा रही है। हाँ, समझ गया, बस समझ गया। यस प्लीज सिट डाउन प्लीज। जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? आपने यहाँ थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो ले लिया। ये सभी आत्माएं परम धाम में रहती हैं, सारी की सारी। सतयुग में जनसंख्या केवल 9 लाख होती है शुरू में, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। सतयुग के एंड में 2 करोड़, त्रेता के एंड में लगभग 33 करोड़, और फिर बढ़ती जाती है संसार की आबादी। ये आत्माएं ऊपर से नीचे आती रहती हैं। अभी भी वहां कुछ आत्माएं बाकी हैं, वो भी नीचे आ जाएंगी, फिर जाना शुरू होगा। और थोड़ा आप क्लियर नॉलेज लेंगे, छोटी सी बात है, कोई बड़ी नहीं है। बहुत ब्रीफ।
हेलो, हाँ भ्राताश्री ओम शांति। मेरा सवाल ये है, 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्लियरिटी हैं जिनके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। यहाँ पर रियली आई फील पॉजिटिवनेस। एक तो आत्मा और शरीर और मन, ये 3 पार्ट हो गए। आत्मा शरीर से अलग है, लेकिन मन वो आत्मा का गुण है या पार्ट है, ये क्या चीज है?
आत्मा और मन और बुद्धि दोनों ही आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं।
सेकंड क्वेश्चन ये है, देखो सभी धर्मों का जो जिस्ट है वो ओम शांति ने शायद मेरे हिसाब से अपनाया हुआ है, कि सभी धर्मों का जो जिस्ट है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। एक पहाड़ी पर एक मंदिर है, 5 गांव उसके आसपास बसे हुए हैं, हर एक गांव का रास्ता उस मंदिर पर जाने का रास्ता अलग अलग है। शायद सभी धर्मों का यही जिस्ट है कि परमात्मा से मिलन कैसे होगा, हर एक का तरीका अलग अलग है, तो ओम शांति उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेगा?
बस जहाँ से आपको सहज मंदिर तक पहुँचने को मिले वहाँ से दौड़ के पहुँच जाइए, यहाँ से आपको फटाफट पहुँचा दिया जाएगा।
हेलो 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 भाई साहब ओम शांति।
ओम शांति।
मेरा क्वेश्चन ये है कि विज्ञान कहता है कि मनुष्य की उत्पत्ति
जो मनुष्य के पुरुष थे वो वानरों से हुई है,
ठीक,
और अपन या कहते हैं कि अपन देवत्व से उत्पन्न
है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि साइंस कहती है बंदर से पहले अमीबा और ये और बंदर से मनुष्य बने हैं। आपको लगता है क्या आपके पूर्वज बंदर थे? अगर कोई आपको कह दे आपके पूर्वज बंदर थे तो लड़ाई नहीं कर देंगे? नहीं, डार्विन एक वैज्ञानिक था, डॉक्टर था, उसने एक रिसर्च की है। ह्यूमन रिसर्च इज ऑलवेज इनकम्प्लीट। देखिए, साइंस एक रिसर्च है और गॉडली नॉलेज एक परफेक्ट ट्रूथ होता है। मैं कल परसों ही एक विज्ञान के स्टूडेंट ने मेरे से ये प्रश्न किया, वैसे तो आपको यहाँ बता दिया कि हमारे पूर्वज तो देवता थे, हम देवता से नीचे उतरते आए हैं। फिजिक्स इन्होंने आप में से पढ़ी हो, वो जानते होंगे हर चीज का पतन होता है। हम जब छोटे थे तो पढ़ते थे कि अगर एक लोहे का पीस रख दिया जाए तो लाखों साल में वो समाप्त हो जाएगा, उससे जो एनर्जी निकलती जाएगी धीरे धीरे उसकी वो एनर्जी कम होती जाएगी। हर चीज में गिरावट आती है, कोई भी चीज सतो से रजो तमो बनती है, अच्छी से बुरी बनती है। तो मनुष्य अगर बंदर होता, उसके पूर्वज बंदर होते, तो गिरावट आती। हम देवता थे, गिरावट हो के मनुष्य बने हैं, इसलिए ये मान्यता पूरी तरह गलत है। भगवान ने हमें इसमें थोड़ी सी ये बात कही थी कि तुम तो देवता थे, अब बंदर बन गए हो, बंदर जैसे।
एक पंक्ति का प्रश्न। ओम शांति भाई जी, महिला सशक्तिकरण यहाँ पे हो रही है, महिला को स्थान मिलना चाहिए, कृपया मुझे स्थान दे। घर या आसपास या कोर्ट कचहरी में बहुत नेगेटिव एनर्जी हम लोगों को मिलती रहती है, तो हम एक सशक्त आत्मा के होकर इसका कैसे दूरीकरण करें?
अरे ये तो यहाँ बताया जा रहा है रोज के आपके कोर्ट कचहरी में ही नहीं, संसार में सभी जगह निगेटिव एनर्जी है, लेकिन यू आर द क्रिएटर। आप इस फीलिंग को साथ लेकर जाओ और जितने अच्छे संकल्प आप वहाँ करेंगे। और यहाँ एक चीज और सिखाई जाती है बहुत अच्छे, स्वमान का अभ्यास, तो आप इतने अच्छे वाइब्रेशंस क्रिएट कर देंगे कि निगेटिव एनर्जी पूरी तरह ऐसे ही नष्ट हो जाएगी जैसे अगरबत्ती की खुशबू से बदबू नष्ट हो जाती है, इसलिए आपके पास पावर है।
ओम शांति। अभी हम सब बैठे ही रहेंगे 2 मिनट,
1 मिनट योग अभ्यास करके फिर उठेंगे।
आदरणीय भ्राता जी का बहुत 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 दिल से हम सब आभार करते कि हम सबको इतना लाभान्वित किया, और आप सब से हमारी ये उम्मीद रहेगी कि हम लोगों ने ये जो सफल कॉन्फ्रेंस यहाँ की है, हमारे आसपास जो भी सेवा केंद्र है उनके संपर्कों में बने रहेंगे और अपने जीवन को यूं ही खुशियों से महकाते रहेंगे। ओम शांति।